मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 2 नवंबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं, तो आज भी मुझे अपने उस दायित्व का निर्वाह करना है। सूचनाएं कुल मिलाकर यह है कि शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स, जो अखबार की जो क्लिपिंग्स हैं, वो आपको कल यानी कि शनिवार को एज इट इज मिलेंगी। और साथ ही साथ योजना के आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। यहां मैं थोड़ी सी यह बात बताना चाहूंगा, मुझे कई मेल ऐसे मिलते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि सर क्या सभी योजना के जो आप आर्टिकल भेजते हैं और कुरुक्षेत्र के, क्या वो सभी पढ़ने चाहिए या उसमें से कुछ छोड़ सकते हैं। सच पूछे तो मुझे इस तरह के प्रश्नों का कारण समझ में नहीं आता कि आप लोगों का ध्यान छोड़ने की तरफ क्यों रहता है। देखिए, आप बहुत बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं और इससे बड़ी परीक्षा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के रूप में या गवर्नमेंट सर्विस के रूप लिए हिंदुस्तान में तो है नहीं, तो छोड़ने का दिमाग में मत लाइए। मैं बता भी दूंगा कि छोड़ सकते हैं तो कैसे आपकी बात नहीं बनेगी, और मैं कहूं किस आधार पर कि आप छोड़ सकते हैं। अरे भैया, अगर आप छोड़ सकते होते तो मैं ही छोड़ चुका होता, फिर मैं क्यों ढालता आपके लिए। मैं भी गारंटी के साथ ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल ये पढ़ना ही पढ़ना है और अगर छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम एक संभावना के क्षेत्र को लेकर के चलते हैं कि नहीं, ये हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब देखिए, योजना पत्रिका हर महीने आती है, कुरुक्षेत्र भी हर महीने आती है, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, है ना, 10 से 15 तक आर्टिकल होते हैं, तो मैं आपको 4-4 प्रोवाइड करता हूं। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि ये जो 4-4 मैं दे रहा हूं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो रिमेनिंग आर्टिकल अगर आप चाहें जो छपे हुए हैं जो मैंने नहीं दिए हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि अगर आप छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल्स देने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो मैंने दिए हैं उसमें से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं आपसे कहूं कि आप उसमें से छोड़ सकते हैं, अन्यथा डिसीजन तो आपको लेना है, आप जैसा चाहें वैसा करने के लिए मित्र स्वतंत्र हैं। साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा जो मेंस के पैटर्न पर होता है, एक करंट कंटेंट आपको दिया जाता है अंग्रेजी के अखबार का जो बहुत अच्छा आर्टिकल हमें लगता है मेंस के लिए जो जरूरी मालूम पड़ता है, उसका हिंदी में अनुवाद ही नहीं कहना चाहिए बल्कि जो सिविल सर्विस की दृष्टि से उपयोगी पॉइंट हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड किया जाता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब आता हूं मैं आज के विषय पर। जैसा कि मैंने कल के अपने डेली ऑडियो में आप सबसे वायदा किया था कि हम सत्य निष्ठा पर बात करेंगे, और अब मैं सत्य निष्ठा पर ही आप सबसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। अब आप देखिए कि इंटीग्रिटी का अनुवाद किया गया है सत्य निष्ठा, तो अगर आप शब्द के अर्थ पर जाएं तो इंटीग्रिटी का सत्य निष्ठा अनुवाद कुछ बात बनती नहीं, क्योंकि ट्रुथ जैसा कुछ अंग्रेजी में तो है नहीं। अंग्रेजी में तो इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? संगति बैठाना, लोगों को जोड़ना, एक ही तरीके से एक ही दिशा में बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, तो आप कह लीजिए कि इंटीग्रेट कर देते हैं। सामान्य तौर पर समझने के लिए इंटीग्रेट कर दिया आपने, उनको मिला दिया, चीजें असंगति थी, बिखरी हुई थी, अव्यवस्थित थी, उनको आपने व्यवस्था दे दी, उनमें एक संगति पैदा कर दी, वो इंटीग्रिटी। जैसे कि आप आर्केस्ट्रा देखिए तो आर्केस्ट्रा में क्या है कि सब 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 लोगों के पास में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, और सबकी धुन भी अलग अलग है, आवाज भी अलग अलग है, स्टाइल भी अलग अलग है, और 30 लोग बैठे हुए हैं। अब उसमें जो गाइड करने वाला है म्यूजिक का, देखिए हाथ वात हिला करके करता रहता है, या जो संगीतकार है, संगीतकार क्या करता है, म्यूजिक कंपोजर, उनमें संगति बैठाता है, उनमें इंटीग्रेशन करता है उनका, है ना, कि कैसे इन सबको मिला करके इस तरीके से मिलाया जाए कि मिला करके एक धुन तैयार हो जाए, एक म्यूजिक तैयार हो जाए। तो अब जो म्यूजिक तैयार हुआ है उसमें आप नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ तबला है, हारमोनियम है, क्योंकि उसमें तो सारी चीजें हैं, 300 चीजें हैं, लेकिन उन 300 की अलग अलग कोई पहचान नहीं है, देख रहे हैं ना आप, सारी की चीजें एक हो गई है। अब आपके समझ में आया होगा कि इसका नाम सत्य निष्ठा क्यों है, हिंदी में सत्य निष्ठा क्यों है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रजवाड़े थे, अलग अलग राज्य थे, उन सबको मिला करके इंटीग्रेट करके क्या बना दिया गया, भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत। अलग अलग को मिला करके एक कर देना, यानी कि वे गुण जो अलग अलग हैं लेकिन एक ऐसी छतरी, फिर से मैं छतरी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जिसके नीचे ये सारे गुण आ जाते हैं, ये सारी क्वालिटी आ जाती है, जो बुनियादी मूल्य है सिविल सर्विसेज के, वो सारे के सारे इंटीग्रेशन उनका हो जाता है। और जहां इंटीग्रेशन हो जाता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। अब उसका नाम एकीकरण न दे करके बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है, सत्य निष्ठा, यानी कि सत्य के प्रति निष्ठा। और फिर सत्य क्या है मित्रों, ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल विषय है, उस पर हम नहीं जानते, लेकिन जो है जैसा होना चाहिए उसको उसी रूप में ग्रहण करना सत्य है। चाहे फिर वो तटस्थता की बात हो, जो मैंने आपको दूसरे वैल्यूज बताए थे, चाहे वो निष्पक्षता की बात हो, चाहे वो सेवा की बात हो, चाहे कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति की बात हो, चाहे भेदभाव रहित बनने की बात हो, जो है जैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा करना ही सत्य निष्ठा है। दोस्तों जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो एक एनुअल रिपोर्ट आपकी होगी, एनुअल रिपोर्ट लिखनी होती है ना, मतलब जो आपके, आपको भी अपनी तरफ से साल भर का लेखा जोखा देना होता है और आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं फिर उस पर कमेंट करते हैं। उसमें एक कॉलम होता है सत्य निष्ठा, उसमें भी हिंदी अनुवाद सत्य निष्ठा ही है, इंग्लिश में हो इंटीग्रिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है। अगर उसमें कोई किसी ने डाउटफुल लिख दिया तो मान करके चलिए कि कैरियर स्पॉइल हो गया, क्योंकि जब आपकी सत्यनिष्ठा ही डाउटफुल हो गई तो फिर चाहे आप कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर क्यों न हो, कितने भी ईमानदार क्यों न बनने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। अगर सत्यनिष्ठा ही डाउटफुल हो गई तो खत्म हो गया, आप भरोसे के लायक रह ही नहीं गए, तो फिर आपको कैसे दायित्व सौंपा जाए। तो इतना महत्वपूर्ण होता है सत्य निष्ठा का कॉलम। देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही मजेदार प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं, जो 2018 के अभी के एग्जाम में पूछा गया, जो कुछ दिन पहले हुआ है 2018 के एग्जाम में, राइट। और ये जो मैं कोटेशन जो कह रहा हूं ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं कहा है, ये किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी नहीं कहा है, इसे किसी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने भी नहीं कहा है, इसे एक उद्योगपति कह रहा है, प्राइवेट उद्योगपति कह रहा है, वो भी इसके महत्व को जान रहा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तब आप सत्यनिष्ठा के महत्व को समझ पाएंगे और तभी आप देखिए सही तरीके से अपनी ओर से लिख पाएंगे। अगर आपकी समझ में कमजोरी रह गई ना तो आप अपनी क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से लिखें, बातें आपकी हों, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति का परीक्षण किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से लिखने में अगर समझ की कमी होगी तो जोखिम भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर समझ कम है तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा कहीं उल्टा पुल्टा लिख दिया आपने और एग्जामिनर तो तुरंत पकड़ लेगा, तो बात खत्म हो जाएगी। तो आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं उनके तत्व लक्षण और इन सब पर ज्यादा न जा करके इस बात पर जा रहा हूं कि कैसे मैं आपको इसकी जड़ तक पहुंचा सकूं, समझा सकूं, राइट। तो देखिए 2018 में एक प्रश्न पूछा गया है, इसे सुनिएगा। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, तीन गुण ढूंढते हैं, राइट, कि ये व्यक्ति पूरी तरह से सत्यनिष्ठा वाला है, इस इंटेलिजेंट भी है और इसके अंदर एनर्जी भी है। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो दो अन्य गुण आपको समाप्त कर देंगे, और पहला गुण कौन सा है, सत्यनिष्ठा। देखिए सीक्वेंस में देखिए, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है यानी कि सत्यनिष्ठा का गुण नहीं है तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे। और ये कोटेशन है, ये वाक्य है वॉरेन बफेट का, सोचिए प्राइवेट व्यक्ति ये बात कह रहा है। फिर प्रश्न देखिए, वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इस सत्य निष्ठा की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप पब्लिक सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप सिविल सर्वेंट को ले लीजिए, इस सत्य निष्ठा की बहुत कमी होती जा रही है। दोस्तों, इसका इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूं। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, यू लुक फॉर दीज थ्री क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट, द अदर टू विल किल यू, वॉरेन बफेट। आप देखिए क्या बात कही गई है। चलिए मैं आपको 2017 का एक प्रश्न बता देता हूं, ताकि आपको डायरेक्शन पता लग जाए कि सत्य निष्ठा पर आपको किस एंगल से तैयारी करनी चाहिए। 2017 में प्रश्न पूछा गया सत्य निष्ठा से संबंधित। समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्य निष्ठा की एक परख है। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड। इस संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए, किताबों के उदाहरण नहीं चलेंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा, चौकन्ना रहना होगा, और जब भी इससे संबंधित कोई घटना घटित होती है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें, और उन एग्जाम्पल्स का प्रयोग, उन घटनाओं का प्रयोग फिर आप अपने उदाहरण में करें। मित्रों, वो निहायत ही जरूरी है। और आपने देखा होगा कि अक्सर डेली ऑडियो लेक्चर में मैं बीच बीच में, जब भी मुझे इस तरह की कोई महत्वपूर्ण घटना दिखाई देती है जिनसे आप अपने फोर्थ पेपर के एग्जाम्पल निकाल सकें, तो मैं इशारे के तौर पर बहुत स्पष्ट रूप से आप सबसे बताता हूं कि आप इसे नोट कर लें, ये फोर्थ पेपर में काम आ सकता है। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी बात पर यकीन करते हुए नोट करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके ऊपर है, लेकिन आपको करना चाहिए। कहते इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्य निष्ठा पर इनफैक्ट किस तरीके से, किस डायरेक्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, सत्य निष्ठा के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया कि बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल वैल्यूज रिलेटेड विद द सिविल सर्विसेज है। वो सारे मूल्य जो सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो वह सत्य निष्ठा होती है, राइट? अब इसमें आप सारी चीजें ले लीजिए, लेकिन यहां जिस सत्यनिष्ठा की हम बात कर रहे हैं, या पारिभाषिक रूप से देखिए उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि हम तीन तरीके हमारे पास हैं, जो आपने अब आगे पीछे जाकर के एटीट्यूड वगैरह में आपने देख लिया है। एक हम सोचते हैं, राइट? सोचने के बाद हम कहते हैं और फिर हम उसको करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य निष्ठा का मतलब है कि इन तीनों में सुसंगति होनी चाहिए। ये तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जो सोच रहा हूं वही मैं कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वही मैं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि नहीं नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मैं सोच लिया है मैंने कि इसका काम करना है और फिर मैं उसके काम को करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह तो रहा हूं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मन ही मन सोच रहा हूं कि अच्छा बच्चू चले जाओ, देखता हूं तुम्हारा काम कैसे होगा। ऐसा नहीं। या मैं उससे कह तो रहा हूं कि नहीं 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 चिंता मत करो, तुम्हारा काम कर लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भैया काम करने के लिए कुछ सुविधा शुल्क तो दो। ऐसे ही काम होते हैं क्या? इस काम को हो जाने के बाद तुम तो लाखों कमाओगे और मैं केवल सरकारी सैलरी के भरोसे रहूं, उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दो, थोड़ा सा कट दे दो। ये सत्यनिष्ठा है। मान लीजिए कि मैं दूसरे हर आप देखिए कि हिंदुस्तान का हर आदमी रिश्वत लेने वाले की आलोचना करता है। मजेदार बात है कि वो खुद रिश्वत देता है। या एक किसी भी आप सरकारी जो सिविल सर्वेंट है पूछ करके देखे तो कोई बेईमानी को सपोर्ट करता है क्या कि यह नहीं नहीं यार वो बड़ा अच्छा आदमी है, देखो पैसे लेता है और काम कर देता है। ठीक है, पैसे लेने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता है। ये बात अलग है कि मैं खुद पैसे लेता हूं, तो फिर क्या करेंगे आप? इसका मतलब है कि अगर आप दूसरे को गलत कह रहे हैं तो समझिए कि अगर वैसा आप करते हैं तो आप भी गलत होंगे, चाहे फिर आप पर कोई भी कुछ दबाव क्यों न हो। अब कंप्रोमाइज वाला आपने पॉइंट देखा ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। चलिए मैं प्राइवेट सेक्टर की एक बात लेता हूं। आप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं। आपको मालूम है कि आज ये जो पेशेंट है इसका ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही थोड़ी सी दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ये कुल 5,000 रुपए में ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन के इसके 50,000 रुपए का बिल बनना है। लेकिन हॉस्पिटल ने आपको कह रखा है कि नहीं नहीं हॉस्पिटल को सर्वाइव अगर करना है तो इस तरह से तो आपको काम करना पड़ेगा, आप इसका ऑपरेशन कीजिए। यहां कंप्रोमाइज करने की स्थिति है। अगर आप अपनी नौकरी को देख रहे हैं तो आप उसका ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन अगर आप अपनी सत्यनिष्ठा को देख रहे हैं तो बट नेचुरली कि आप ऑपरेशन मत कीजिए, आप मना कर दीजिए और मना करने के बाद जो भी उसका रिस्क होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आप रिजाइन करके और कुछ कर लीजिए, किसी और अस्पताल में चले जाइए, अपना खोल लीजिए। तो सत्यनिष्ठा की कीमत तो आपको चुकानी पड़ सकती है, प्राइवेट सेक्टर में चुकानी पड़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में चुकानी नहीं पड़ेगी आपको, याद रखिए। हाँ, एक दो मामलों में चुकानी पड़ सकती है। नंबर 1, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, आप जिस पद पर हैं उस पद, मान लीजिए कि बहुत अच्छा पद है, दायित्व वाला पद है, रेस्पेक्टफुल पद है, वहां काम करने की ज्यादा गुंजाइश है, आपको पता लगा कि ऐसी जगह पर डाल दिया गया है जहां कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, आप बस समय काट रहे हैं, ऐसे पद दिया जा सकता है आपको, जो अक्सर होता भी है, तो उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो यानी कि सत्य निष्ठा को आप निभा सकें इसकी पूरी गुंजाइश सरकारी तंत्र में होती है, और यह बहुत ही जबरदस्त ताकत है मित्रों। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि कांग्रेस सरकार जो इससे पहले रही है उस पर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई कोलगेट कांड हो रहा है तो कोई पूजी स्पेक्ट्रम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ उंगली नहीं उठाई कि नहीं ठीक है उनकी योग्यता पर उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, उस पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि भैया इन्होंने भी कुछ इसमें कट लिया होगा, किसी ने भी नहीं कहा। और अगर कोई कहता भी है तो सामने वाला तुरंत रिफ्यूज कर देगा कि नहीं नहीं यार ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विश्वसनीयता है, यानी कि जो इंटीग्रिटी होती है, जबरदस्त रूप से दूसरों के मन में आपके लिए विश्वास का भाव पैदा कर देती है। और दूसरों का यह विश्वास एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था में और खासकर सिविल सर्वेंट के लिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तब लोग आपके साथ हैं, लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और अगर आप सीधे फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं केवल अपने इंटीग्रिटी की ताकत पर। यह बहुत बड़ी मित्रों ताकत भी है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, चूंकि वक्त मेरे पास इतना ही है तो मैंने सत्य निष्ठा को अपनी तरफ से थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं कि इस मूल को पकड़कर आप जब सत्य निष्ठा के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यह गुण आपकी समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और साथ ही मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।